सुमो रेसलिंग के बारे में आपने सुना होगा, पर भारत में अभी ये इतना लोकप्रिय नहीं है, महिलाओं में तो शायद बिल्कुल नहीं। भारत में गुजरात की हेतल दवे पहली और शायद इकलौती भारतीय महिला सुमो रेसलर हैं। तरह तरह की परेशानियों के बाद वो इस खेल में आईं। कोई आसान नहीं था उस परिवेश में, जहाँ पर लड़की को दुबला पतला होना ही उसकी सुंदरता का पैमाना होता है, वहाँ पर सुमो रेसलिंग करना इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हेतल ने सब चुनौतियों को स्वीकार किया। कोई कोच न होने के कारण उन्होंने वीडियो देख देख कर सीखा, फिर वो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और आज भी बनी रहीं। उनके पिता का योगदान इसमें कदम कदम पर रहा। आज वो कई देशों में सुमो रेसलिंग के लिए जा चुकी हैं। भले वो भारत की पहली और इकलौती सुमो रेसलर हैं, लेकिन अब वो मशहूर हो चुकी हैं। अब तो उनके जीवन पर बायोपिक सुमो दीदी भी बन चुकी है और कई फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। कैसे सुमो रेसलिंग की तरफ हेतल का झुकाव हुआ, जब इस खेल को भारत में शायद ही कोई महिला खेलती हो, हेतल बताती।
जी नमस्ते, मेरा नाम हेतल दवे है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप मुंबई से हूँ। और मेरा जो गांव है, मतलब जो बेस है, वो राजस्थान है, गुजरात राजस्थान बॉर्डर से बिलोंग करती हूँ। मैंने एक्चुअली मेरी शुरुआत 5 साल की उम्र से हुई, जब मैंने स्पोर्ट्स एज अ करियर चूज किया। मैं एक्चुअली जूडो करती थी पहले, मैंने जूडो से अपना स्पोर्ट्स का जो जर्नी है शुरू किया है, और जूडो में भी मैंने मतलब इंटरनेशनल लेवल तक खेला है। तो हमारे जो क्लब में सुमो रेसलर्स, जो मेल सुमो रेसलर्स हैं, जो पहले जाते थे, मतलब जो रेसलिंग करने कुश्ती वाले जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो लोग सुमो रेसलिंग के लिए जाते थे, तो उनको देख के मतलब मुझे इस स्पोर्ट्स में, इस गेम में आने की इच्छा हुई। एक यू नो एक इंटरेस्ट जागा कि ये बहुत अलग गेम है। जब टीवी वगैरह में हमने सिर्फ मेल को ही ये गेम खेलते देखा है, कभी किसी फीमेल को देखा नहीं था। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, मैंने जो प्लेयर्स आए थे उनसे पूछा, मैंने अपने कोच से पूछा कि क्या लेडीज भी, क्या फीमेल भी ये गेम खेलती है। तो तब पता चला कि हाँ, मतलब रिसेंटली फीमेल्स को भी इंट्रोड्यूस किया है इस गेम में, बिकॉज ये बेसिकली जापान में भी सिर्फ मेल डोमिनेटेड गेम ही है। ये एक्चुअली एक फेस्टिवल होता है, एक ट्रेडिशन है, जिसको अभी धीरे धीरे मतलब और भी कंट्रीज में खेला जाता है एज अ गेम। तो वो ही सब देख के मतलब उनके साथ ट्रेनिंग करके फिर मैंने खुद से अपना रिसर्च शुरू किया। मैं साइबर कैफे में जाके समझ रही थी कि क्या कैसे खेलते हैं, क्या है क्या नहीं।
हेतल को अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो परिवार के सहयोग से इस मिशन में कामयाब हुई हैं। इसके लिए उन्होंने अपने जूडो कोच का भी सहारा लिया। धीरे धीरे वो एक एक कदम आगे बढ़ती गई।
एक्चुअली जो मैं जो लेवल पे खेलती हूँ वो एमेच्योर लेवल कहते हैं, मतलब लेडीज को एमेच्योर लेवल के लिए ही फिलहाल अनुमति मिली है। तो एमेच्योर लेवल पे 3 वेट कैटेगरीज होती है, एक लाइट वेट, मिडिल वेट और हैवी वेट, और ओपन वेट कैटेगरी, 4 वेट कैटेगरीज होती है। तो मैं मिडिल वेट कैटेगरी में खेलती थी। बाकी जो हम जो देखते हैं, जो हैवी सुमो रेसलर्स है, वो प्रोफेशनली खेलते हैं, उसमें लेडीज अलाउड नहीं है। तो इसीलिए उनका एक पर्टिकुलर वेट उनको रखना पड़ता है जब आप प्रोफेशनली खेलो। और मेरा तो हमेशा से, मैं प्योर वेजिटेरियन रही हूँ, तो मैंने अपने डाइट में ऐसा कोई चेंजेस कभी किया नहीं था। हाँ ठीक है, मतलब प्रोटीन वगैरह बोलते हैं जो खाना चाहिए, ऐसा था कि हमारे जो फैमिली इकोनॉमिक वाइज इतना भी कोई वेल ऑफ नहीं थे हम लोग के प्रोटीन डाइट या ये वो कोई पर्टिकुलर एक हैवी डाइट फॉलो कर सके। तो जो मेरे घर पे बनता था मैं उसी को खा के मैंने अपना जो भी ट्रेनिंग किया है। हाँ, मैंने मतलब स्ट्रेंथ वगैरह के लिए अपने ट्रेनिंग में बहुत सारे इंक्लूड किया था, जैसे मैं फास्ट मूवमेंट्स के लिए मैंने बॉक्सिंग किया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मैंने वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग किया था। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ये सब जो ट्रेनिंग भी मिली है वो भी बहुत अच्छे लोगों से मिली है कि जिन्होंने मेरे इस पैशन को समझा। होता है ना कि लोग फीस के लिए सिखाते हैं कि चलो हमको फीस मिलेगा ये आएगी, तो पर मेरे से किसी ने आज तक कभी फीस नहीं ली। मेरा जो पैशन है उसको समझ के उन्होंने मुझे ट्रेन करवाया हर एक चीज में। और मैंने सुमो रेसलिंग के लिए ट्रेनिंग खुद से की। मैं साइबर कैफे में जाती थी और वहां से मैं वीडियो देख के एक डायरी में जर्नल बनाती थी कि कौन सा स्टेप कैसे करना है। बैठ के मैं खुद वहां बैठ के सीख के जर्नल बनाती थी, फिर अपने घर आती थी और अपने मेरे फादर और ब्रदर को बैठ के मैं बताती थी कि ऐसे ऐसे इसको करना है। तो हम उसको पहले इनेक्ट करते थे कि जो मैं सीखी हूँ उसको पहले मैं स्टेप वाइज अपने भाई के साथ इनेक्ट करती थी और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करती थी। तो बहुत सी चीजें टेक्निकल मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम कंपटीशन खेलने गई तभी मुझे समझी। बाकी जो देख देख के जो सीखा है वो ही बस बस सीख के गई थी। मैंने कुछ एकदम एक्स्ट्रा, जैसे बोलते ना कि प्रॉपर ट्रेनिंग लेके हम जाए, तो वैसा ट्रेनिंग नहीं किया था। मैं जूडो करती थी बस, मैंने उसी के टेक्निक उसी का ट्रेनिंग टेक्निक उसी का सब करके और बेसिक जो सीखना था जो सुमो का वो सब वीडियो से देख देख के सीखे।
हेतल के लिए उनकी पहली विदेश यात्रा जो उन्होंने टूर्नामेंट के लिए की थी आज भी याद है। उनको लेने के लिए वहाँ के मेयर स्वयं आए थे। यही नहीं, उनको वहाँ पर सभी सुविधाएं दी गईं। शायद वो पहली भारतीय महिला इस खेल में गई थी। यहाँ तक उनके पास सुमो बेल्ट भी नहीं थी जो उनको वहाँ दी गई।
जी, तो मैं जब फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए गई थी तो मैं एक्चुअली इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और ताइपाई इन जगहों पे गई हूँ कंपटीशन खेलने। और मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है, वर्ल्ड गेम्स खेले हैं और एशियन चैंपियनशिप खेली है। मेरा सुमो का स्पैन 4 साल का ही रहा है क्योंकि हमको खुद के स्पॉन्सर्स खुद ही करना पड़ता था। कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट कभी नहीं मिला क्योंकि सुमो रेसलिंग गेम इंडिया में तो कोई जानता ही नहीं है और इंडिया में कोई खेलता नहीं है, तो एसोसिएशन वगैरह भी बहुत छोटा है और गेम ओलंपिक्स में नहीं है तो गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो फर्स्ट टूर्नामेंट खेलने में गई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2008 में एस्टोनिया में। और वहां जाके मुझे पता चला कि बेल्ट हमें खुद अपना लाना पड़ता है जो कि मेरे पास था नहीं। और पर वहाँ के जो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो टीम थी, वहाँ जाके मुझे पता चला कि एज अ ओनली गर्ल जो इंडिया से मैं गई हूँ, तो वहाँ के लोग इतना प्राउड थे मुझे देख के कि इंडिया से पहली बार कोई लड़की आई है खेलने। तो बहुत एक अलग एनवायरनमेंट था, एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और मुझे लेने स्पेशली वहाँ के मेयर आए थे एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने और वो इतने इतने खुश थे और इतने प्राउड थे कि उन्होंने एक एक उनके ऑर्गेनाइजिंग टीम में से एक एक इंसान को मुझे सिर्फ मेरे लिए रखा था, एक बंदे को जो इंग्लिश में बात कर सके और मेरे कम्युनिकेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और सिंस बीइंग अ वेजिटेरियन तो मुझे उन्होंने वेज डाइट के लिए जो भी मुझे खाना हो मैं जिससे हाथ रखूँ वो मेरे लिए हाजिर, वैसा टाइप का एक उन्होंने मेरे लिए सिस्टम बना दिया था। और मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी बट वहाँ कैसा है कि आप कंपटीशन खेलने जाओ तो स्टे, फूड वगैरह सब आपको ही करना पड़ता है। तो जो लिमिटेड स्पॉन्सरशिप मुझे मिली थी मुझे उसी में ही गुजारा करना था। तो जब कंपटीशन खेलने जाते हैं तो उनके पैकेजेस होते हैं, तो आपको उस पैकेज में एक चूज करना है, तो उस हिसाब से आपको रूम वगैरह मिलता। तो सिंस के मेरे पास ज्यादा फंड्स नहीं थे तो मैंने सबसे लोएस्ट पैकेज चूज किया था, जो एक हॉस्टल टाइप का था जो मुझे शेयर करना था किसी के साथ, 3-4 लोगों के साथ। और मैं एज अ टीनेजर, एक तो छोटी, मुझे कुछ समझ नहीं और किसी और देश में गई हूँ तो अलग सा डर भी है कि अकेली हूँ। तो मैंने उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे सबसे हाईएस्ट पैकेज में एक सिंगल रूम, मतलब सिर्फ मेरे लिए स्पेशल वो रूम एक करके मतलब मेरे लिए किया उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट।
हेतल के जीवन पर बायोपिक सुमो दीदी भी बनी है। ये फिल्म कई फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हो चुकी है, जिनमें टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, पाम स्ट्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल मुख्य हैं।
जी सुमो दीदी बनी है और बहुत से फिल्म फेस्टिवल में गई है, बहुत लोगों ने इसे सराहा है, बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों को बहुत पसंद आई है। मुझे पर्सनली बहुत मैसेजेस आए कि हम मतलब आज आजकल अपनी सोसाइटी ऐसी हो गई है ना, वेट को लेके बहुत एक अलग सा ट्रेंड चल रहा है कि लड़की पतली है तो सुंदर है, मोटी है तो एक अलग कैटेगरी में आ जाती है। तो मोटे पतले का जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो कहीं ना कहीं एक एक पर्सन को बहुत हर्ट करता है। कई बार हम कई बार मतलब ऐसे बचपन में मेरे साथ भी हुआ है, जैसे कोई आके बोल दिया अरे मोटी हट इधर से, बैठने दे जगह नहीं है, तो वो एक जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो बहुत हर्टफुल होता है। सामने वाले को लगेगा कि चल मैंने मजाक में बोला, बट जिसको बोला है उसको बहुत हर्ट अंदर से फील होता है। तो मेरी जो मूवी है ये एक मैसेज के साथ आ रही है, तो ये जब आएगी, जब आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मैसेज है। और मैं बस मेरे जैसी और लड़कियों को यही बोलना चाहूंगी कि जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका ड्रीम है, आप तीसरे की बात मत सुनिए, कोई क्या बोल रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मुझे करना है मैंने किया। मुझे भी बहुत मेरे कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने बहुत बोला था कि ये सब चीजें आप कुश्ती कर रहे हो, आप रेसलिंग कर रहे हो, कहीं हाथ पैर टूट जाएगा, आपकी शादी नहीं होगी, कौन शादी करेगा। क्योंकि आपके इंडियन कल्चर में अभी भी वैसा है कि शादी ही एक अल्टीमेट है, कि अगर लड़की है तो उसका अल्टीमेट गोल एक शादी है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फिर भी मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे, मैं एक बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड फील करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी इन सब चीजों पे गौर नहीं किया ना मैं और ना मुझे करने दिया। तो इग्नोर ऑल द नेगेटिविटी अराउंड एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ।
सच है, हेतल दवे आज भारत की शान है। सारी चुनौतियों को पार करके आज उन्होंने अपने लिए एक नई पहचान बनाई है। लखनऊ से फैसल फरीद।